From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City में Temple Square सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का रविवार दोपहर 186वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए हैं वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। इसका प्रसारण बॉनिवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजे के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome
the भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अर्धवार्षिक 186वें सम्मेलन के समापन सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। थॉमस अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुझे इस सत्र का संचालन करूं। हम उन सभी को स्वागत करते हैं जो हमारी कार्य में विभिन्न स्टेक सेंटरों या दूसरे माध्यम से देख रहे हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन टैबरनेकल गायक मंडली मेल बिलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देश द्वारा होगा। ऑर्गन पर बुअनी गुडलाइफ और लिंडा मैरग्रेस बजाएंगी। गायक मंडली ने इस सत्र का आरंभ ओ से व्हाट इज द ट्रूथ गाकर करेगी। आरंभिक प्रार्थना उसके पश्चात एल्डर एनरिक आर फलेबर 70 से द्वारा दी जाएगी, जिसके पश्चात गायक मंडली लीड काइंडली लाइट गाएगी।
Our beloved Heavenly Father,
हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम बहुत आभारी हैं इस कॉन्फ्रेंस के इस सत्र में जो हम भागीदारी कर रहे हैं, जो संदेश हमारे संदेश मार्गदर्शकों ने हमें दिए हैं हम सबों के लिए, और जो भी मार्गदर्शन हमारा इस संदेश को देने जा रहे हैं, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन के लिए, उनकी सलाह के लिए और उनके 12 के परिषद के सदस्यों के लिए, हम अपना आभार व्यक्त करते हैं सुसमाचार के पुनर्वर्थान के लिए, यीशु मसीह के अंतिम दिनों के संतों के चर्च के लिए विशेषकर, और उनके पराशित बलिदान के लिए जो उन्होंने हमारे लिए दिया। हम प्रार्थना करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल और दिमाग हमारे उस तरफ घूम सके कि हम जो संदेश हमें दिए जाते हैं उनको समझ सकें। हम आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ रहे ताकि हम इन सबको समझ सकें। ये सब हम कहते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
We will now be pleased to hear.
अब हम 12 परिषद की परितों के एल्डर डेविड बिटनर को सुनेंगे. उनके पश्चात जनरल अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार भाई ब्रैन एन कस्टन द्वारा सुनेंगे. 70 के एल्डर कार्ल बी कुक हमें संबोधित करेंगे.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized the eternal truth that only by doing the will of the Father is the saving grace.
जैसे कि उद्धारकर्ता ने पहाड़ पर उपदेश का समापन किया, उन्होंने इस सच को महत्व दिया कि केवल पिता की इच्छा पूरी करने से पुत्र की मुक्ति का अनुग्रह प्राप्त होता है. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम पे भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं और तेरे नाम से बहुत को अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना. एक रुकम कमरे वालों, मेरे पास से चले जाओ. हमारी समझ इस घटना के बारे में बढ़ती है जैसे कि हम इसके प्रेरित संशोधन पर विचार करते हैं. महत्वपूर्ण से बाइबल के राजा जेम्स के संस्करण में विवरण है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, जिससे जोसेफ स्मिथ के अनुवाद किया, तुम में मुझे नहीं जाना, मैं बदल गया. 10 कुमारियों के दृष्टांत पर भी विचार करें. ध्यान रखें कि यह पंचमुख और तैयार कुमारियां अपने चिरागों के लिए तेल प्राप्त करने तब गई जब उन्होंने दूल्हे से जाकर भेंट करने के लिए रोना सुना. जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया. इसके बाद वह दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दें. उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता. हम में से हर एक के लिए इस दृष्टांत का अर्थ विस्तार से एक दूसरे प्रेरित संशोधन द्वारा किया गया है. महत्व के साथ यह वाक्य है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसका वर्ण बाइबल के राजा जेम्स के स्मरण में दिया गया है. उसका स्पष्टीकरण जोसेफ स्मिथ के अनुवाद में यह कह दिया गया कि तुम मुझे नहीं जानते. हम सबके लिए यह वाक्य तुम्हें मुझे कभी नहीं जाना और तुम मुझे नहीं जानते एक गहरे आत्मिक अनंत दर्शन की वजह होनी चाहिए. क्या हम केवल उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं या हम निरंतर तीव्रता से जान रहे हैं? हम कैसे प्रभु को जान सकते हैं? ये अंतरात्मा के संबंधित प्रश्न मेरे संदेश का केंद्र है. मैं गंभीरता पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूँ कि जैसे कि हम मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं. मार्ग और सच और जीवन मैं ही हूँ. बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंचा जा सकता. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते. हम पिता को जानते हैं और जब हम उसके प्रिय पुत्र को जानते हैं. इस जीवन का विशाल उद्देश्य केवल पिता के एकलौते पुत्र के बारे में सीखना ही नहीं परंतु उसको जानने का प्रयास करना भी है. 4 आवश्यक कदम प्रभु को जानने में हमारी मदद करते हैं. उन पर विश्वास का अभ्यास करना, उनका अनुसरण करना, उनकी सेवा करना और उन पर भरोसा करना. उनमें विश्वास का अभ्यास करें. यीशु मसीह में विश्वास का अभ्यास करना उन्हीं दया और अनुग्रह का पर निर्भर करना है. हम उद्धारकर्ता को जानना जरूरी शुरू जानना शुरू करते हैं जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को तेजित करते हैं और उसकी उनकी शिक्षाओं को परखते हैं, यहाँ तक कि जब हम उनके शब्दों को अपनी आत्मा के एक हिस्से में स्थान देते हैं, जैसे कि हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ जाता है, हम उनमें विश्वास करते हैं और उनके आत्मविश्वास से मुक्ति की शक्ति, चंगाई और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। सच्चा विश्वास प्रभु पर केंद्रित होता है और हमेशा धार्मिक कार्य की ओर अगुवाई करता है। प्रकाशित धर्म और पहला सिद्धांत यीशु मसीह पर विश्वास है। सभी धार्मिकता की नींव और सभी बुद्धिमान प्राणियों में कार्रवाई का सिद्धांत है। मुक्तिदाता ने यह घोषित किया कि क्योंकि यदि सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना प्रमुख है, विश्वास को ग्रहण और प्रयोग करने के लिए विश्वास कम कर्म बिना मृत है। हमें केवल वचन पर सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले होना चाहिए। परमेश्वर के वचन सुनना और उद्धारकर्ता में विश्वास का आत्मिक उपहार ग्रहण करना बारीकी से संबंधित है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और परमेश्वर के शब्द द्वारा सुनना है। हम उनसे और उसकी आवाज से परिचित धर्म शास्त्रों के में दिए गए उनके शब्दों को पढ़ते और उनका भोज करते हैं। सच्चे उद्देश्य से पिता से पुत्र के नाम में प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा की संगति को खोजते रहो। मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में सिखाना और लागू करना उनमें विश्वास का उपहार ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। प्रभु में विश्वास का प्रयोग करना एक आवश्यक तैयारी है उनका अनुसरण करने के लिए। और यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अद्रियस को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुआरे थे और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चले गए। गुरु को सुनने और उनका अनुसरण करने में पतरस और अद्रियस का उदाहरण सशक्त है। इसी तरह से उद्धारकर्ता आपको और मुझे यह निर्देश देते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाना तब होता है जब अपने आप को सब अभक्ति और हर संसारिक वासना से वंचित करें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। उद्धारकर्ता ने हमें शिक्षा दी कि हमें उसकी तरह बनना है। इस प्रकार प्रभु का अनुसरण करना उसी के तरह कार्य करने को शामिल करता है। हम लगातार प्रभु को जानते हैं जब हम उनके बलिदान द्वारा उनकी तरह बनने को खोजते हैं। अपने नश्वर सेविकाई में यीशु ने पद चिन्हित किए, मार्ग का नेतृत्व किया और परिपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। एक सही सोच उनके चरित्र की परिपूर्णता और विशेषताओं का स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। जब हम समर्पित शिष्यत्व के मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसी प्रकार उद्धारकर्ता का अनुसरण करना हमें वास्तविक ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम बनाता है, ताकि जो जीवन के मार्ग का हम अनुसरण करें वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इस तरह का ज्ञान कोई अज्ञात रहस्य नहीं है और हमारे संसारिक व्यस्य या साधारण नश्वर चिंताओं पर इनका मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि अनुबंध के मार्ग के साथ स्थिर और निरंतर प्रगति वह जीवन का मार्ग है जिससे वह प्रसन्न होते हैं। मार्मन के पुस्तक में लेही का सपना वह मार्ग पहचानता है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जिन चुनौतियों का सम्मान हम करेंगे और उन उपलब्ध आध्यात्मिक सिद्धांत जो हमारे उद्धारकर्ता के निकट आने और उनका अनुसरण करने में हमारी मदद करेंगे। संकरे और संकीर्ण मार्ग पर दबाव देकर आगे बढ़ना ही है जो वह चाहते हैं हम करें। वह पेड़ का फल चखना और गहराई से प्रभु में परिवर्तित होना आशीष है वह चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, इसलिए हमें इशारा करते हैं मेरे पीछे आओ। दोनों ही प्रभु में विश्वास का प्रयोग करना एक आवश्यक तैयारी है उनका अनुसरण करने के लिए। कैसे एक मनुष्य उस स्वामी को जान सकता है जिसकी सेवा उसने नहीं की और जो उसके लिए एक अजनबी है और उसके हृदय में विचारों और उद्देश्य से दूर है। हर अधिक और पूर्ण रूप से प्रभु को जानने लगते हैं जब हम उसकी सेवा करते हैं, उनके राज्य में परिश्रम करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, वह हमें उदारता से साथ स्वर्गीय मदद, आध्यात्मिक उपहार और बदती क्षमता के साथ आशीर्वाद देते हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया है। जब हम उसकी अंगूर की वाटिका में काम करते हैं, उन्होंने ये घोषणा की, क्योंकि मैं तेरे चेहरे के समक्ष आऊंगा, मैं तेरे दाहिने और बाएं हाथ की ओर रहूंगा, और तेरी और मेरी आत्मा आपके मन में होगी, और मेरे दूत आपके चारों ओर रहेंगे आपको संभालने के लिए। हम उद्धारकर्ता को जानने लगते हैं जब हम वह जानने का प्रयास करते हैं जहां वो चाहते हैं हम जाएं। जब हम वो कहने का प्रयास करते हैं जो वो चाहते हैं हम चाहें, और जब हम वह बनते हैं जो वो चाहते हैं हम बने, जैसे कि हम उन पर विनम्रता से अपनी पूरी निर्भरता को स्वीकार करते हैं। वह हमारी सेवा करने की क्षमता और अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। धीरे धीरे हमारी इच्छा उनकी इच्छाओं को साथ साथ अधिक पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, और उनके उद्देश्य हमारे उद्देश्य हो जाते हैं, कुछ इस तरह से कि हम ऐसा कुछ नहीं मांगते कि उनकी इच्छा के विपरीत हो। उनकी सेवा करना हमारे हृदय बल और शक्ति की मांग करता है। इस कारण से निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना विरोध करता है। प्रकृति मनुष्य की आत्मा केंद्रित और स्वार्थी झुकाव हो, हमारा प्रेम उनके लिए बढ़ता है जिनकी हम सेवा करते हैं। और क्योंकि दूसरों की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करना है, हम उन्हें और अपने भाई बहन और को और गहराई से प्रेम करते हैं। इस तरह हम प्रेम के उदारता के आध्यात्मिक उपहार का प्रतिकरण करते हैं, यहाँ तक कि मसीह का पवित्र प्रेम। पिता से अपने हृदय की पूरी क्षमता से प्रेम करो कि तुम इस प्रेम के भर जाओ जो वह उन सब पर अर्पित करता है जो उनके पुत्र यीशु मसीह के अनुयायी है। जबकि वे प्रकट हो, हम उनके सामने हो, क्योंकि हम उनको वैसा ही देखेंगे जैसे कि वो हो, कि हमें वह आशा रहे कि हम भी शुद्ध किए जाएंगे जैसे कि वे शुद्ध हैं। मैं गिरजा के उस सदस्य से परिचित हूँ जो धर्मशास्त्रों में सम्मिलित और पुलपिट से घोषित सिद्धांत और नियमों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर भी उनके लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वह सुसमाचार के सत्य उनके जीवन और हालात में विश्वास रूप से लागू होते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने उद्धारकर्ता के वादे वाली आशीषों उनके लिए उपलब्ध हैं और उनके जीवन के काम कर सकती है। मैं उन भाई बहनों का भी सामना किया है जो कर्तव्यनिष्ठ से सेवा करते हैं, लेकिन जिनके लिए पुनर्निर्माणित सुसमाचार अभी तक सब जीवित और उनके जीवन के बदलाव की वास्तविकता नहीं लाया गया है। नए नियम में एक पिता ने उदारकर्ता से अपने पुत्र को चंगा करने के लिए कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू विश्वास करता है सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा और आंसुओं के साथ कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की मदद कर। मैंने इस पिता के अनुरोध पर कई बार विचार किया है, मेरे अविश्वास में मदद करें। मुझे आश्चर्य है यदि इस व्यक्ति की सिफारिश का उद्देश्य मुख्य रूप से यीशु को हमारा मुक्तिदाता और चिकित्सक शक्ति में विश्वास नहीं करना था। उन्होंने मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन शायद उसे स्वामी के चिकित्सा शक्ति में विश्वास करने के लिए मदद की आवश्यकता थी, जो वास्तव में इतनी व्यक्तिगत हो सकती थी कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को आशीष दिलाई। उसने मसीह का पर आम और तौर पर विश्वास रूप से व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं किया। हम अक्सर अपने उसके बारे में गवाही देते हैं जो हमें जानते हैं कि सच है, लेकिन शायद हम में से प्रत्येक के लिए अधिक उचित प्रश्न यह है कि क्या हम उस पैर विश्वास करें जो हम जानते हैं। पवित्र धर्म विधियां जो कि सही प्रोहित्य अधिकार से दी जा गई है, उद्धारकर्ता पर विश्वास करने के लिए, उनको जानने के लिए, अनंत में जो हम जानते हैं उस पर विश्वास करने के लिए, और मिल्कैसिक पुरोहित सुसमाचार का प्रशासन करना है और राज्य के सहसे की कुंजियों को पकड़ कर रखता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की ज्ञान की कुंजी है। हम प्रभु पर विश्वास और उनको जानने लगते हैं जब परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी का प्रकाश मेलकिसेदेक प्रवक्ताओं के द्वारा होता है जो द्वार को खोलती हैं और जिसे हम सब के लिए अपने जीवन में धार्मिकता की शक्ति से शक्ति प्राप्त करना संभव है। हम उद्धारकर्ता को उनका अनुसरण कर मानते और जानते हैं। जब हम तीव्रता से उनकी चाबी मुखाकृति से पवित्र धर्म विधियों को ग्रहण और ईमानदारी से सम्मानित करते हैं, हम मसीह पर विश्वास और उनके अपने निजी अनुभव के बलिदान के पवित्र चिकित्सा मजबूती और पवित्रीकरण से जानते हैं। हम मालिक पर विश्वास और उनको जानने लगते हैं जब उनके शब्द की शक्ति हम से जड़ पकड़ लेती है जो हमारे हृदय में दिमाग में लिखी जाती है और हम अपने सभी पापों को त्याग सौंप देते हैं, उन्हें जानने लगते हैं। उन पर विश्वास करना यह भरोसा करना है कि उनकी भरपूर आशीषें हमारे व्यक्तिगत जीवन और परिवारों में उपलब्ध और लागू हैं। हम अपनी पूरी आत्मा से उन पर विश्वास करते हैं जब हम अनुबंध मार्ग के साथ में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से की ओर समर्पित करते हैं, उनकी प्राथमिकताओं और हमारे समय निर्धारण को उनको प्रस्तुत करते हैं। उन पर विश्वास करना शक्ति और वादों को सच मानकर स्वीकार हमारे जीवन के परिक्षेप और शांति को आमंत्रित करना है। भविष्य के एक दिन में हर घटना झुकेगा और हर जुबा स्वीकार करेगी कि यीशु ही मसीह है। उस धन्य के दिन पर हम जान लेंगे कि वह हम सब को हमारे नाम से जानते हैं और मैं गवाही और वादा करता हूँ कि हम सिर्फ प्रभु के बारे में जान नहीं सकते पर उनको जान सकते हैं जब हम उन में अपने विश्वास का अभ्यास का उनका अनुसरण करते हैं, सेवा और विश्वास करते हैं। ऐसी में गवाही उनके पवित्र नाम में देता हूं। आमीन।
Jesus's visit to the Nephites after his
resurrection. यीशु ने नेफाइटियों से उसके पुनरुत्थान के बाद हमें महान बातों की शिक्षा देने के लिए ध्यान पूर्वक भेंट करने का प्रबंध करता है। उसके पिता के लोगों से गवाही से शुरुआत हुई कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है जिससे वो प्रसन्न है। तब यीशु ने स्वयं नीचे आकर अपने प्रायश्चित बलिदान की गवाही दी, लोगों से सच्चाई को जानने की वो मसीह है और आने वाला है, और उसके छिद्र शरीर के चिन्ह और हाथों और पैरों में ठिकी कोलों के निशान छूकर महसूस करने का आमंत्रण देता है। ये गवाहियां बिना शक सुबह के स्थापित हुई थी। यीशु का प्रायश्चित पूर्ण था और पिता ने अपने वचन को सुधार करता दिया जाएगा पूरा करता है। यीशु फिर निफाइटियों को शिक्षा देता है कि पिता की आनंद की योजना की सारी आशीषें कैसे प्राप्त की जाएं, जो हमारे लिए उद्धारकर्ता के प्रायश्चित का कारण उन्हें मसीह के सिद्धांत की शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। मेरे आज का संदेश मसीह के सिद्धांत पर केंद्रित है। धर्मशास्त्र मसीह के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं, जैसे यीशु मसीह में और उसके प्रायश्चित, पश्चाताप करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का उपहार, अंत तक बने रहने में विश्वास का अभ्यास करते रहना। मसीह का सिद्धांत हमें मसीह के प्रायश्चित की आशीषों को पाने की अनुमति देता है। मसीह का प्रायश्चित ने हम पर शर्तें रखी जिस पर हम निर्भर करते हैं। दया और कृपा के और पवित्र मसीह का अनुग्रह मसीह में पूर्ण होने, अच्छी बातें प्रदान करने और अनंत जीवन प्राप्त करना है। मसीह का सिद्धांत दूसरी तरह अर्थ है, एकमात्र अर्थ जिसके द्वारा हम अपनी सारी आशीषें यीशु के प्रायश्चित द्वारा अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। यह मसीह का सिद्धांत है कि हमें आत्मिक समर्थ को करने की इजाजत देता है जो कि वर्तमान आत्मिक स्थिति के ऊपर उठाएगा उस स्थिति पर जहां हम संपूर्ण बन सकते हैं उद्धारकर्ता पहुंचना होगा। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में एल्डर डीथ क्रिस्टोफर्सन ने सिखाया था, दोबारा जन्म लेना हमारे भौतिक जन्म के समान नहीं है, एक अधिक प्रक्रिया है न कि घटना, और इस प्रक्रिया में उलझना नश्वरता के उद्देश्य का केंद्र है। चले मसीह के सिद्धांत के प्रत्येक अंश को विस्तार से जाने। पहला, यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित में विश्वास। भविष्यवक्ता सीखते हैं कि विश्वास का आरंभ मसीह के शब्दों को सुनने के द्वारा होता है। मसीह के शब्द उसके प्रायश्चित बलिदान की गवाही हमें बताते हैं कि कैसे हमें क्षमादान आशीषें और उत्कर्षता प्राप्त कर सकते हैं। मसीह के शब्द सुनने के उपरांत हम उद्धारकर्ता की शिक्षा और उदाहरण का अनुसरण करने का चुनाव करने के द्वारा विश्वास का अभ्यास करते हैं। ऐसा करने के लिए नेफाई ने सिखाया था कि हमें मसीह के बचाने का महान सामर्थ्य पर आश्रित होना चाहिए, क्योंकि पहले के जीवन में यीशु एक परमेश्वर था पर पाप रहित जीवन जिया था, और उसने प्रायश्चित के दौरान हमारी और आपकी सारी मांगों के लिए न्याय किया था, और उसके पास सारे मनुष्यों का पुनरुत्थान करने के बारे में सामर्थ्य और कुंजियां हैं, और उसने पश्चाताप की स्थिति के ऊपर न्याय दया के लिए संभव किया था। एक बार हम समझ ले कि मसीह की दया की उत्पन्न कर सके, हम पश्चाताप के लिए विश्वास ला सके, मसीह के बचाव पर पूर्णता से आश्रित होना, फिर विश्वास कर हमें बचाने के लिए उसमें वो सब किया जिसकी जरूरत थी और हमें भरोसे पर काम किया था। सिर्फ विश्वास में हम इतना परेशान होने नहीं देता का कारण है कि दूसरे बारे में हम क्या सोचते हैं और परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है का अधिक ध्यान देना शुरू करें। दूसरा पश्चाताप लमनाइटिस एमिल सिखाता है, अगर तुम मसीह के नाम पर विश्वास करने लगोगे तब तुम सब पापों पर पश्चाताप करोगे। पश्चाताप हमारे पिता की ओर से एक कीमती उपहार है जिसे उसके इकलौते पुत्र ने बलिदान से संभव बनाया है। ये प्रतिक्रिया है जो पिता ने हमें दी है, जिसके द्वारा हम अपने विचार क्रमों और अपने अस्तित्व को बदलें ताकि हम अधिक और अधिक उद्धारकर्ता के समान बन जाएं। ये कोई बड़े गुनाह के लिए नहीं अपितु अपने रोज की आचरण को आंकने और सुधारने की प्रतिक्रिया है, जो कि हमें हमारे गुनाहों से, हमारे अवगुणों, हमारी कमजोरियां और हमारी अयोग्यताओं से ऊपर उठाने में मदद करता है। पश्चाताप हमारा मसीह का सच्चा अनुयायी बनने का कारण होता है, जिससे कि हम प्रेम से भर जाते हैं और अपने डर को बाहर कर देते हैं। पश्चाताप हमारा कोई प्रतिपूर्ण नहीं है। यदि हमारे संपूर्ण जीवन जीने की योजना विफल हो जाती है तो लगातार पश्चाताप करना यही एकमात्र रास्ता है जो कि अनंत आनंद ला सकता और हमें हमारे स्वर्गीय पिता के साथ लौटकर जीना सार्थक कर। पश्चाताप के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और आज्ञाकारी बनते हैं। अब इसे अकेला नहीं किया जाता, परमेश्वर की अच्छाइयों और अपने खोखलेपन को पहचान कर अपने बेहतर प्रयास के साथ, अपने बेहतर से परमेश्वर के साथ जुड़ना हमारे जीवन में अनुग्रह लाएगा। अनुग्रह का पवित्र सहायता या सामर्थ्य है, यीशु मसीह के प्रेम और अपार कृपा ने दिया अच्छा कामों को करने के लिए, वरना हम बनाए रखने के काबिल नहीं हो पाएंगे यदि हम मतलब के अनुसार छोड़ें, क्योंकि पश्चाताप करना ही उद्धारकर्ता के समान बनना है, जो कि अपने आप में संभव नहीं है। हमें आवश्यकता की उद्धार कर्ता की जरूरत है अपने जीवन में जरूरी बदलाव लाने के लिए। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, हमें अपने पुराने अयोग्य व्यवहारों, कमजोरियों, गुणों और भय को नए व्यवहार और भरोसों जो कि उद्धारकर्ता के समीप लाए और हमारी मदद उस जैसा बनने के बदलाव करना। तीसरा बपतिस्मा है प्रभु भोज। भविष्यवक्ता मॉर्मन सिखाते हैं पश्चाताप का पहला फल बपतिस्मा है। पूरा करने के लिए पश्चाताप को बपतिस्मा के धर्म विधि का प्रबंध किसी एक के द्वारा जो परमेश्वर को अधिकारी पौरोहित धारक के रूप में जोड़ना चाहिए। गिरजे के सदस्यों के लिए अनुबंध बपतिस्मा पर बनना बाकी समय में नवीनीकरण करते हैं, जैसे हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा और प्रभु भोज की धर्म विधियों में हम पिता और पुत्र की आज्ञाओं का पालन करने, मसीह की हमेशा स्मरण करने और मसीह के नाम में स्वेच्छा से लेने या उसका काम और गुणों को अपने ऊपर लेने का अनुबंध करते हैं। उद्धारकर्ता बदले में क्षमा करने का अनुबंध या अपने गुनाहों से छूट कर और उसकी आत्मा को अपने ऊपर बहुतायत से लेना है। मसीह ने भी हमारी मदद कर अनंत जीवन पाने का, उसकी तरह से बनने का वादा किया है। डॉगलस जी होम्स युवा पुरुष की जनरल अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार लिखते हैं, बपतिस्मा के धर्म विधि और प्रभु भोज का चिन्ह दोनों अंत का परिणाम और दोबारा जन्म की प्रतिक्रिया है। बपतिस्मा में हम इंसान पुराना शरीर दफन करते हैं और जीवन का नवीनकरण करा के आ जाते हैं। प्रभु भोज में हम सीखते हैं ये बदलाव कदम दर कदम प्रतिक्रिया से है, जहाँ सक्षम और हफ्ता दर हफ्ता है। हम जैसे पश्चाताप कर अनुबंध और एटोनमेंट की आत्मा से बढ़ते उद्धारकर्ता के समान। मसीह के सिद्धांत की धर्म विधिया और अनुबंध जरूरी है। हमेशा हमारा सहयोगी के रूप में पवित्र आत्मा हमें अतिरिक्त सामर्थ्य या बल हमारे अनुबंधों का पालन करने देता। वो हमें पवित्र करता है, जिसका अर्थ है पाप से आजाद, शुद्ध, साफ और यीशु मसीह में प्रायश्चित से पवित्र करता है। हमारा पवित्रीकरण न सिर्फ शुद्ध करने की प्रक्रिया अपितु हमें आत्मिक उपहार की जरूरत से उद्धारकर्ता के पवित्र गुणों के साथ और हमारी प्रकृति को बदलाव भी प्रदान करता है, जैसे कि हम महान शैतान के कार्य नहीं करेंगे। हर समय हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में विश्वास, पश्चाताप, धर्म विधियों, मसीह समान सेवा और अन्य योग प्रयासों के ग्रहण करते हैं। हम कदम दर कदम, सक्षम दर सक्षम परिवर्तित होते जाते हैं ताकि हम मसीह के समान बन पाए। पांचवा, अंत तक बने रहना। भविष्यवक्ता नेफी सिखाता है कि पवित्र आत्मा के ग्रहण करने में पश्चाताप हमें अंत तक बने रहना, जीवित परमेश्वर के पुत्र का उदाहरण के अनुसार करके एल्डर डेल जी रनलन ने अंत तक बने रहने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया था। और इस तरह मसीह में विश्वास, पश्चाताप, प्रभु भोज लेकर अनुबंधों का नवीनीकरण कर और बपतिस्मा और आशीषें और पवित्र आत्मा से प्राप्त कर एक महान सत्तर पर सदैव साथी के रूप में दोहराते हुए चलते रहना के द्वारा संपूर्ण हो सकते हैं। जैसे हम करते हैं मसीह की तरह और अधिक बनते हैं और अंत तक बने रहने में समर्थ सबके साथ जो जरूरत के समय जोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा के स्वागत और उस स्वागत का बदलाव हमारे भीतर अपना विश्वास और बनाता है। बढ़ता हुआ विश्वास अतिरिक्त पश्चाताप की ओर ले जाता और तब हम अपने हृदय की प्रतीकात्मक बलिदान करते हैं और अपने पापों को प्रभु भोज की वेदी पर लाते हैं। हम पवित्र आत्मा को महान छेड़ी पर ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा को महान छेड़ी पर ग्रहण करना हमें आगे दोबारा जन्म की ओर ले जाता है। जैसे हम लगातार इस प्रक्रिया को करते हैं और सभी बचाव धर्म विधियों को और सुसमाचार के अनुबंधों को प्राप्त करते हैं, हम अनुग्रह के लिए अनुग्रह प्राप्त करते हैं। हम महान मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर, भाइयों और बहनों, हम मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं। हम दोनों स्थायी और आत्मिक दोनों में आशीषित होते हैं, यहाँ परीक्षाओं में भी। अंततः हम सार्थक है और एक भली बात को ग्रहण करने के लिए मैं गवाही देता हूँ कि प्रतिक्रिया होती और लगातार होती रहती है। परंतु अधिक महत्वपूर्ण है, हम अपने जीवन में मसीह के सिद्धांत लागू करना चाहिए, क्योंकि ये ही सिर्फ हमारे स्वर्गीय पिता की ओर वापसी का मार्ग प्रदान करता है। यही एकमात्र रास्ता है उद्धारकर्ता के पाने का और उसके पुत्र पुत्रियों बनने का। वास्तव में एक ही रास्ता है पाप से मुक्त होने का और आत्मिकता में बढ़ने का। अपने जीवन मसीह के सिद्धांत लागू करें। विकल्पतः से प्रेरित यूहन्ना सिखाता, जब कोई भी उसकी शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसके पास पिता भी नहीं। और स्वयं यीशु 12 निफाटी से कहता है कि अगर हम मसीह में विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा लेने और अंत तक बने रहने के अभ्यास में विफल हो जाते हैं, हमें काटकर अग्नि में डाल दिया जाएगा और जहां से हम लौट नहीं सकते। तो हम कैसे मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में और लागू कर सकते हैं? एक तरीका, हर सप्ताह प्रभु भोज के लिए सोचकर समझ के तैयारी करना, प्रार्थना पूर्वक कुछ समय लेकर विचारें कि कहां पर हमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। कम से कम हम एक चीज का त्याग कर सकते हैं जो कि हमें यीशु मसीह के समान प्रभु भोज की वेदी पर ला सके। सहायता के लिए विश्वास में याचना करें, आवश्यक आत्मिक उपहार की जरूरत के लिए मांगें और आने वाला सप्ताह के दौरान नियमों में सुधार करें। जैसा हम करते हैं, पवित्र आत्मा ऊंची श्रेणी के सत्तरवे हमारे जीवन में आएगा और हमें अधिकतर सामर्थ्य देगा हमारी अपूर्णता से उभरने के लिए। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह की संसार का उद्धार करता है और कि यही एकमात्र नाम है जिससे हम बचाए जा सकते हैं। सभी अच्छी बातें उसी से आती हैं और उसी के द्वारा उपलब्ध हैं। परंतु वास्तव में हर एक भली बात को ग्रहण करने लगना अनंत जीवन भी शामिल है। हमें मसीह के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
As a boy, I enjoyed working.
छोटे हुए मुझे अपने अंकल लेमन और आंटी डोर्थी के खेतों पर काम करना पसंद था। अंकल लेमन अक्सर परियोजनाओं का संचालन करते थे और डोर्थी आंटी उनकी मदद करती थी और एक अपना पुराना ड्रॉज ट्रक की चलाती। मुझे याद है वह एंड्रोलाइन की जल्दी जब हम मिट्टी में फंस जाते थे पहाड़ का एक सकरा मार्ग चलाते हैं। अंकल एमन चलाते एक घेरे में ढलो डोर थी, तब मैं प्रार्थना करने लगता किसी तरह प्रभु की मदद से और कुछ गैयर को घुमाने से उन्हें घेर मिला जाता था। सारे पहाड़ियों के बंद हो जाने के बाद साथ मार्थे के साथ ट्रक आगे बढ़ाता और काम निरंतर करते रहता है। एक घेरे में डालना का उल्लेख है कि एक विशेष गैयर उसमें काम करने के लिए कई तरह के गियर्स को एक साथ काम करने के लिए लगाया जाता है ताकि और बल उत्पन्न हो। एक घेरे का गियर और चार पहिए वाली गाड़ी के साथ गियर को नीचे ऊपर और हिलाने की अनुमति देता है। मैं हम सबको घेरे के गेयर के भाग समझ जैसे समझता हूँ। जैसे कि हम गिरजा घर में एक साथ सेवा करते हैं, वर्ड्स और शाखाओं, परिषदों और सहकारियों में जैसे कि गेयर्स को एक साथ किया जाता है और बड़ी शक्ति को प्रदान करने के लिए वैसे ही एक महाशक्ति होती है जैसे एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि हम एक होते हैं, एक दूसरे की सेवा करने में हम बहुत कुछ एक साथ पूरा करते हैं जो उसमें से हम अकेले करते हैं। काफी रोमांचक है प्रभु के कार्य में व्यस्त होना और एक सेवा का सहायता करना। सेवा का अक्सर गिरजाघर में प्राप्त करना सदस्यों के लिए एक बड़ी आशा है। प्रभु ने कहा है कि यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी सेवा करो, और हम सबकी उनकी सेवा दूसरों को सेवा द्वारा करते हैं। जैसे कि हम सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हम उन्हें इस तरह से जानते हैं जैसे हम कभी नहीं जान सकते थे। हमारा विश्वास उनमें बढ़ता है, हमारी मुश्किल एक स्वरूप में ढली जाती है, जीवन और भी संतुष्ट हो जाता है, हमारा प्रेम दूसरों के लिए बढ़ जाता है और हमारी सेवा की इच्छा भी। इस प्रक्रिया द्वारा हम आशीषित होते हैं, परमेश्वर जैसे बनते हैं और हम तैयार होते हैं उसके पास वापस जाने के लिए। जैसे अध्यक्ष जी रोमनी ने सिखाया, सेवा ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं ताकि हम सेलेस्टियल राज्य में जीने का हक मिले। सेवा एक ऐसी रेशा है सेलेस्टियल राज्य के ऊंचे जीवन में बनाया जाता है। गिरजा में सेवा किंतु चुनौती भरी हो सकती है, और यदि हमसे कुछ करने के लिए कहा जाए तो हम डर जाते हैं, और यदि हम सेवा से उब जाएं, यदि हमें कुछ ऐसा करने के लिए बुला लिया जाए जो हमें शुरुआत में आकर्षक ना लगे। हाल ही में मुझे एक नया कार्य मिला। मैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के एक क्षेत्र में सेवा कर रहा था। वह सेवा करना काफी रोमांचकारी था। वह गिरजा काफी युवा और स्थापित हो रहा था और हमें संतों से प्रेम था। फिर मुझे गिरजे के मुख्यालय बुलाया गया, और सच कहूँ तो मैं कुछ समय ही उत्साहित था। कार्य का बदलाव कुछ न जानने को लगाया। एक रात आने वाले बदलाव के विषय में सोचते हुए मैंने अपने पर दादा जोसेफ स्किनन को देखा। मैंने उनकी पत्रिका से जाना कि वो और उनकी पत्नी मारिया जब नेम्बू गए तो उन्हें सेवा करने की इच्छा पूरी हुई, तो वह भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से मिले और उनसे पूछा कि वह उनकी मदद कैसे करेंगे। भविष्यवक्ता ने उन्हें कुछ मील दूर पूर्व के नगर मैंने काम करने के लिए कहा, और जितना हो सके उतना, और इसलिए उन्होंने किया। मैंने विचार किया जोसेफ स्किन के अवसर पर जो मैंने उन्हें इस कार्य से मिला। अचानक से मुझे एहसास कि मुझे भी वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ है जैसा सबको मिलता है। गिरजाघर की सभी बुलाहटें परमेश्वर की ओर से आती हैं अपने निर्धारित सेवकों द्वारा। मैंने स्पष्टता से महसूस किया आत्मिक पुष्टिकरण का कि मेरा नया कार्य प्रेरणा भरा था। यह महत्वपूर्ण था कि हम उसका जोड़ो कि हमारी बुलाहट परमेश्वर से आती है हमारे प्रवृत्ति मार्गदर्शकों द्वारा। इस अनुभव के बाद मेरा गुणों में परिवर्तन आया और मैं सेवा की गहन इच्छा से भर गया। मैं पश्चाताप की आशीषों से भर गया और मेरा हृदय बदल गया। मैं अपने नए कार्यों से खुश हूँ। यदि हम सोचते हैं कि हमारे गिरजे की बुलाहट साधारणता से हमारे प्रवृत्ति मार्गदर्शकों के सुझाव होते हैं कि यह घूमना कुछ नमूना है या कि यह हमारे पास आते हैं, क्योंकि कोई यही ग्रहण करेगा। हम आशीषित होंगे जैसा हम सेवा करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हाथों को पहचानते हैं कि सेवा पूरे हृदय से करते हैं, अतिरिक्त शक्ति हमारी सेवा में आती है और हम यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं। बुलाहट की विश्वास की जरूरत है। थोड़ी देर में जोसेफ और मारिया सेवा में आते हैं। वे बहुत बीमार हो जाते हैं, उन पर पैसे नहीं हैं।
Along with hundreds of descendants, will be eternally grateful that Joseph and Maria did not turn back. Blessings come as we persevere in our callings and responsibilities and hang on with all the faith we have. I know a wonderful gospel doctrine teacher who lifts class members as she teaches, but that wasn't always the case. After joining the church, she received a calling to teach in primary. She felt she had no teaching skills, but because she knew the importance of serving, she accepted. Fear quickly overcame her, and she stopped attending so she wouldn't have to teach. Thankfully, her home teacher.
मैं एक बहुत ही उत्तम सुसमाचार के सिद्धांतों के शिक्षक को जानता हूँ, जिस कक्षा के सदस्य को पढ़ाती है और प्रेरित चर्चाएं करती, परंतु ऐसा हमेशा नहीं था। गिरजाघर में शामिल होने के बाद उन्हें प्राथमिक को पढ़ाने की बुलाहट मिली। उसे लगा कि उनको कोई शिक्षा देने की योग्यता ताऊ भी नहीं, परंतु वह सेवा देने के महत्व को जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार किया। उसको डर ने जल्द ही घेर लिया और उन्होंने आना बंद कर दिया ताकि उन्हें पढ़ाना ना पड़े।
I need a break. I'm too old. It's someone else's turn. Or simply, I am too busy. Brothers and sisters, accepting and fulfilling a calling is an act of faith. We can trust in what our prophet, President Thomas S. Monson, repeatedly teaches. Whom the Lord calls, the Lord qualifies. And when we are on the Lord's errand, we are entitled to the Lord's help. End quote. Whether we are overwhelmed or underwhelmed, whether we are scared to death or bored to death, the Lord wants us to gear down and power up and serve. I see no signs that President
Monson और उसके पहली अध्यक्षकर्ताओं और 12 के प्रेरितों में कोई भी चिन्ह अत्यधिक व्यस्त या अत्यधिक थके होने का देखता हूँ। हम महत्वपूर्ण बुलाहट में करते हैं, परंतु हर एक बुलाहट और कार्य आवश्यक होता है। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली हमारे गिरजे के पिछले भविष्यवक्ताओं और अध्यक्ष ने कहा, हम सब इस महान कार्य में साथ हैं। उसका कर्तव्य अपने क्षेत्र के उत्तरदायित्व में उतना ही गंभीर है जितना कर्तव्य मेरे क्षेत्र में। कोई भी बुलाहट इस गिरजाघर में छोटी या कम परिणाम की नहीं है। चलिए हम विश्वास में उठें, पहिए पर डालें और आगे चलें, इस अच्छे कार्य के चलिए डालें। विश्वसनीय आउंट डोर्थी के साथ भाई और बहन हो चलें, सेवा करें। यदि आप अपने बिशप या शाखा अध्यक्षता का दिन बनाना चाहते हैं, उससे यह प्रश्न पूछें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? प्रभु मुझे कहां सेवा करने देंगे? जैसे कि वह प्रार्थना और उसके निजी परिवार पर गौर करते हैं और काम में जिम्मेवारी पर वह प्रेरित होंगे उनको एक उपयुक्त बुलाहट देने में, जैसे कि आपको आशीष दी जाएगी, आपको पुरोहित की आशीष सफल होने के दी जाएगी, आप आशीषित होंगे। हर सदस्य की आवश्यकता है और हर सदस्य को सेवा के लिए एक अवसर चाहिए।
He will be inspired to extend an appropriate calling. As you are set apart, you will receive a priesthood blessing to help you succeed. You will be blessed. Every member is needed, and every member needs an opportunity to serve. Jesus Christ,
यीशु मसीह हमारा महान प्रतिरूप है, अपना जीवन दिया पिता के काम के लिए। इस संसार को रचने से पहले महान सभा में यीशु को आरंभ से चुना और अभिषेक किया गया। स्वेच्छ से मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। ऐसा करने से वह पूरी तरह से हमारे सेवक बन गए। यीशु मसीह के द्वारा और उनकी शक्ति जो हमें उनके बलिदान से प्राप्त होती है, हम भी सेवा कर सकते हैं। वे हमारी मदद करेंगे। मैं अपना हार्दिक प्रेम उनको देता हूँ, जो उन सबको जो अभी गिरजा के परंपरागत रूप से सेवा नहीं दे पा रहे, परंतु जो अपना जीवन सेवा की विचारधारा में जी रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने प्रयास में आश्रित हैं। मैं उसके प्रति भी प्रशंसा करता हूँ जो अपनी बुलावट हर हफ्ते अंदर और हफ्ते बाहर करते हैं, और वह भी जो जल्द ही बुलावट को सेवा के लिए स्वीकार करेंगे। सारे योगदान और बलिदान का मूल्य है, खास करके उसके लिए जिनकी हम सेवा करते हैं। सारे जो सेवा करते हैं प्रभु की दया को पाएंगे। हमारी उम्र और परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वैसा तो हमारा देख रेख होना चाहिए। सेवा एक बुलाहट है, सेवा एक मिशन है। अपनी माँ की सेवा करें, एक अजनबी की सेवा करें, अपने पड़ोसी की सेवा करें, केवल सेवा। प्रभु हम सबको आशीष दें, अपनी सेवा के प्रति प्रयास को और यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बने। मैं गवाही देता हूँ कि वह जीवित है और उसके कार्य को निर्देशित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
On a single signal from the conductor,
संगीतकार के निर्देश पर कालिसिया खड़े होकर गायक मंडली के साथ मिलकर गाएगी हाई ऑन द माउंटेन टॉप. उनके पश्चात हम एल्डर रोनाल्ड ए रेसबेंड 12 पीड़ित के परिषद को सुनेंगे. उनके पश्चात 70 के एल्डर एवन स्मूस और के बेट नेथरस को सुनेंगे. उनकी वक्ता के पश्चात गायक मंडली भवा सभा का समापन आई विल फॉलो हिम फेथ गायकर करेगी. एल्डर डेल ई हेरेनल्स 12 के परिषद के प्रयोग हमें संबोधित करेंगे.
This is the 186th semi-annual.
ये अंतिम दिनों के यीशु मसीह के गिरजे का 185वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन है.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
How भाइयों और बहनों नमस्कार. इस सम्मेलन के दौरान हम बहुत आशीषित हुए हैं. 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्य के रूप में यह पहला साल अत्यधिक विनम्र रहा है. यह साल व्यक्तिगत प्रयास करने, विकास करने, निरंतर स्वर्ग में मेरे अपने पिता से विनती करने का रहा है. मैंने परिवार, मित्रों और गिरजे के विश्वभर के सदस्यों के समर्थन प्रार्थना को महसूस किया है. आपकी चिंताओं और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद. मुझे बहुत से पुराने और नए मित्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है. एक ऐसे मित्र जिसे मैं पहले बहुत सालों से जानता था, प्यार करता था, मिलने के बाद मुझे आज की वार्ता तैयार करने की प्रेरणा मिली थी. इस वार्ता के उद्देश्य के लिए मैं इसे मित्र कहूंगा. जब मैं मिला, मित्र ने मुझे गुप्त रूप से बताया वह संघर्ष कर रहा था. उसने महसूस किया कि वह विश्वास की कमी का अनुभव कर रहा था और मेरी सलाह पाला चाहता था. मैं कर्तव्य हुआ कि उसने अपनी अनुभूतियों और चिंताओं को मेरे साथ बांटा था. उसने उस आत्मीयता को फिर से प्राप्त करने की इच्छा को व्यक्त किया जो उसने एक बार महसूस की थी, जिसे अब वह सोचता था कि खो रहा था. जब वह बोल रहा था, मैंने बहुत ध्यान से सुना और गंभीरता से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है उसके मुझे हलकते। मित्र ने शायद अपने बहुत से के समान प्राथमिक के गीत हेवनली फादर आर यू रियली देयर के इस सरल और शक्तिशाली प्रश्न किया। उन सबों के लिए जो इस प्रश्न को करते हैं, मैं उस सलाह को बांटना चाहता हूं जो मैंने अपने मित्र को देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबका विश्वास मजबूत होगा और आप यीशु मसीह के निष्ठावान शिष्य होने को फिर से निर्णय लेंगे। मैं आपको याद दिलाकर आरंभ करता हूं कि आप स्वर्ग के प्रेमी पिता के बेटे और बेटियां हैं और कि उसका एक समान प्रेम रहता है। मैं समझ सकता हूं कि आप व्यक्तिगत संघर्षों या परीक्षाओं, निरीक्षाओं या बिखरे सपनों से घिरे होते हैं, तो इस प्रकार की दिलासा देने वाले प्रेम की अनुभूतियों को याद करना कठिन होता है। यीशु मसीह भीषण संघर्षों और परीक्षाओं को अच्छी तरह जानता था। उसने अपने जीवन हमारे लिए दिया था। अपने अंतिम समय में बहुत क्रूर था, जिसकी कल्पना करना हमारे लिए कठिन है, लेकिन उसका बलिदान हमारे प्रति उसके शुद्ध प्रेम की महान अभिव्यक्ति है। कोई गलती, पाप या चुनाव हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को नहीं बदल सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप पूर्ण व्यवहार करना स्वीकार्य है, ना ही यह कि पाप करने के पश्चात करने हमारी जिम्मेवारी से मुक्त हो करता है। यह ना भूलें, स्वर्गीय पिता हम सबों को जानता और प्रेम करता है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। जब मैंने अपने मित्र की परिस्थिति का चिंतन किया, मेरा दिमाग मॉर्मन की पुस्तक में पाए गए महान ज्ञान किया गया। और अब मेरे बेटों, याद रखो कि यह मुक्तिदाता की चट्टान है जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिस पर तुम अपनी नींव रख सको, ताकि जब शैतान अपनी प्रबल हवाओं को फेंकेगा, हाँ बवंडर में अपनी बिजलियों चमकाएगा, हाँ जब उसके सारे ओले बरसेंगे और प्रबल तूफान तुम्हें थपेड़े मारेंगे, तुम्हें दुखों की घाटी और अंतहीन श्राप में खींचने के लिए उसके पास बल नहीं होगा, क्योंकि जिस चट्टान पर तुम्हारा निर्माण हुआ है वह मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जिस पर यदि मनुष्य का निर्माण हो तो वे गिर नहीं सकते। मैं प्रमाणित करता हूं, दुखों की घाटी और श्राप, अंतहीन श्राप जहां कोई नहीं जाना चाहता, मेरा मित्र को लगता था कि वह इसके निकट जा रहा था। जब मैंने अपने मित्र के समान लोगों को सलाह दी, मैंने सालों से लिए निर्णयों की जांच की है जिनके कारण वे पवित्र अनुभवों को भूल गए हैं, वे कमजोर हुए और संदेह करने लगे थे। मैंने उन्हें हिम्मत दी जैसा मैं आपको हिम्मत देता हूं। उस समय को याद करें, विशेषकर जब आपने आत्मा को महसूस किया था और आपकी मजबूत आत्मा गवाही थी। उन आत्मिक बातों को याद करें जो आपने प्राप्त की थी। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे, यानी इन बातों से दूर रहेंगे, तो आपकी गवाही मजबूत नहीं करती या भरोसा उपवास उड़ाती है, तो विनम्र प्रार्थना करना और उपवास द्वारा यह अनमोल समय वापस आ जाएगा जब आप गवाही मजबूत थी। मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि आप यीशु मसीह की सुसमाचार की सुरक्षा गर्मराहट को एक बार फिर से महसूस करेंगे। हम में से प्रत्येक को सबसे पहले स्वयं को आत्मिक रूप से मजबूत करना चाहिए, और तब अपने आसपास के लोगों को। धर्मशास्त्रों को निरंतर पढ़ें और इन्हें पढ़ते समय अपने विचारों और अनुभूतियों को याद करें। सच्चाई की अन्य स्रोतों की भी खोज करें, लेकिन धर्मशास्त्र की इस सावधानी पर ध्यान दें। लेकिन बुद्धिमान होना तब तक ठीक होता है जब वे परमेश्वर की सलाह पर ध्यान देते हैं। गिरजे की सभाओं में जाएं, विशेषकर प्रभु भोज सभा में भाग लें और अनुबंधों को नवीन करें, विशेषकर उदारकर्ता को हमेशा याद करने की प्रतिज्ञा को, ताकि उसकी आत्मा आपके साथ सदा बनी रहे। कुछ भी गलती हमने की हो या हम कितने भी अपूर्ण महसूस करते हों, हम हमेशा एक दूसरे की आशीषित कर और ऊपर उठा सकते हैं। मसीह सेवा में उन तक पहुंचकर हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदयों की गहराई तक महसूस कर सकते हैं। व्यवस्था विरोध में पाई जाने वाली प्रभावशाली याद सलाह को याद करना महत्वपूर्ण है। अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने उन आंखों से देखी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम अपने बेटों और अपने पोतों को भी सिखाना। हमारे चुनाव द्वारा कई पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता है। अपने परिवार के साथ अपनी गवाही बांटें, उन्हें याद करने के लिए उत्साहित करें कि उन्होंने कैसा महसूस किया था जब उन्होंने अपने जीवन में आत्मा को महसूस किया था, और अनुभूतियों को देने की व्यक्तिगत इतिहास में लिखें ताकि जरूरत के समय उनकी समय स्वयं की बातें उन्हें याद दिलाई जाए और प्रभु उनको कि उनके प्रभु उनके साथ कितना भला रहा है। आप याद करेंगे नफी और उसके भाई पीतल की पट्टियों को लेने वापस गए थे जिनमें उनके लोगों का इतिहास लिखा था ताकि वे अपने अतीत को भूल ना जाए। मार्गन की पुस्तक में ही हिलामेन ने अपने बेटों को नाम अपने पूर्वजों पर रखा था ताकि वे प्रभु परमेश्वर की भलाई को भूल ना जाएं। देखो मेरे बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को लोगों को बताओ। देखो मैंने तुम्हारे नाम अपने पहले पूर्वजों के पर रखा है जो कि यरूशलेम प्रदेश से बाहर आए थे, और मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि तुम जब अपने नाम के बारे में सोचो तो उन्हें भी याद कर सको, और जब तुम उन्हें याद करो तब उनके कार्यों को भी याद करो, और जब उनके कार्यों को याद करो तब उनको जान सको किस प्रकार इसे कहा गया था और इसे लिखा गया था कि ये अच्छी बातें हैं। इसलिए मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो अच्छा है, मानो ये बातें तुम्हारे लिए कही हैं और लिखी गई हैं जैसे कि ये उनके लिए लिखी गई और कही गई हैं। आज बहुतों की परंपरा अपने बच्चों के नाम आत्मिक हीरो या विश्वासी पूर्वज पर रखने की है ताकि वे अपने विरासत को भूल न जाएं।
When I was born,
जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम रोनाल्ड ए रेसबैंड रखा गया था। मेरा आखिरी नाम रेसबैंड मेरे पिता के पूर्वजों का सम्मान है। बीच का ए मुझे मेरी माँ के डेनिस एंडरसन पूर्वज का सम्मान है। मेरी पड़नानी जेन एंडरसन डेनमार्क से थी। 1861 में प्रभु ने दो मार्मन प्रचारकों को जेन्स और एन कैथरीन एंडरसन के घर भेजा, जहां उन्होंने उनका और उनके 16 साल के बेटे का परिचय पुनः स्थापित सुसमाचार से कराया था। इस प्रकार विश्वास की विरासत आरंभ हुई जिसका लाभ मुझे और मेरे परिवार को मिला। एंडरसन्स ने मॉर्मन की पुस्तक को पढ़ा और कुछ समय बाद बपतिस्मा लिया। अगले साल एंडरसन परिवार ने अटलांटिक को पार किया और उत्तरी अमेरिका में संतों से मिलने की बुलाहट को सुना। दुर्भाग्यवश जेन्स समुद्री यात्रा में मर गए, लेकिन उनकी पत्नी और बेटा 3 सितंबर 1862 को सॉल्ट लेक घाटी में पहुंचे। कठिनाइयों और दुखों के होते हुए भी उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, ना ही उनके बहुत से वंशजों का विश्वास डगमगाया। कभी ना भूलें, प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, यह व्यक्तिगत जानने की जाते हैं। मैं आपके साथ व्यक्तिगत उदाहरण बढ़ता हूँ जब मैं याद करता हूँ, और अपने पिता के नाम के साथ मैं विरासत को नहीं भूलूंगा। कभी ना भूलें, प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, या व्यक्तिगत पर्वित अरबों को अनदेखा ना करें। शैतान हमें आत्मिक बातों से दूर ले जाना चाहता है, जबकि प्रभु की इच्छा हमें ज्ञान देना और उसके कार्य में व्यस्त रखने की है। मैं आपके साथ इस सच्चाई का व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मैं अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त किया था। उत्तर स्पष्ट और शक्तिशाली था, फिर भी मैंने तुरंत उसके अनुसार कार्य नहीं किया, और कुछ समय बाद मुझे संदेह होने लगा क्या उत्तर वास्तव में था, क्या मैं बहुत से शैतान की तरह धोखे में फंसे होंगे? बहुत दिनों बाद मैं धर्मशास्त्र की इस शक्तिशाली आयत के साथ जागा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हें अतिरिक्त गवाही की इच्छा हो तो अपना ध्यान उस रात पर लगाओ जब तुमने अपने सारे मन से प्रार्थना की थी कि तुमने बातों की सच्चाई के संबंध में जान सको। क्या मैंने तुम्हारे मन में इस विषय के संबंध में शांत नहीं किया था? परमेश्वर, इससे अधिक गवाही तुम क्या पा सकते हो? इस प्रकार था मानो प्रभु कह रहा था, रोनाल्ड, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है, अब वैसा ही करो। मैं उस नई निर्देशन का बहुत आभारी हूँ। मुझे तुरंत प्रेरणा द्वारा दिलासा मिली और उस कार्य को कर पाया था अपने हृदय में, मैं जानते हुए कि मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया था। मैं यह दिखाने के लिए इस अनुभव को बांटता हूँ कि हम कितनी जल्दी अपने मनों को भूल जाते हैं, कैसे हमारे आत्मिक अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं ऐसे क्षणों को सजोजना सीख लिया है ताकि मैं इन्हें भूल ना सजाऊं। अपने मित्र और अपने उन सबों को जो अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं, मैं यह वादा करता हूं, जब आप यीशु मसीह के अनुसार विश्वासी जीवन जीते और उसकी शिक्षाओं का पालन करते तो आपकी गवाही सुरक्षित रहेगी, यह मजबूत होगी। बनाए गए अनुबंधों का पालन करने, चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी करते हों, अच्छे माता पिता, भाई और बहन, दादा दादी, नाना नानी, मासी बुआ और मित्र बने जो प्रियजनों के व्यक्तिगत गवाहियों से मजबूत करते हैं, जो आत्मिक अनुभवों को बांटते हैं। विश्वासी और दृढ़ बने, बेशक संदेह के तूफान आपके जीवन में दूसरों के कार्यों द्वारा हलचल पैदा करते हैं। उसकी खोज में रहें जो आपको आत्मिक रूप से ऊपर उठाता और सुरक्षित करता है। उन नकली बातों से दूर रहें जो बहुत जल्दी फैलती हैं, और प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं की अपनी उन्मुदियों को लिखना याद रखें। जीवन के कठोरतम तूफानों के बीच परमेश्वर के बेटे या बेटी के रूप में अपनी दिव्य विरासत या उसके साथ रहने की अपनी दिव्य नियति को ना भूलें, जो संसार की हर वस्तु से बढ़कर है। आलमा के कोमल शब्दों को याद रखें, और अब देखो मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुमने हृदय में परिवर्तन अनुभव किया हो और मुक्ति भरे प्रेम गीत गाने की इच्छा की है, मैं पूछता हूं, क्या अब तुम्हारी यही इच्छा है? उन सबों से जो अपने विश्वास को सुरक्षित करने की जरूरत को महसूस करते हो, मैं याचना करता हूं, मैं गवाही देता हूं, जोजो स्मिथ परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। मैं जानता हूं उन्होंने परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को देखा और बातें की जैसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा था। मैं बहुत आभारी हूं उन्होंने उस अनुभव को लिखना नहीं भूला ताकि हम उनकी गवाही को जान सकें। यीशु मसीह की सच्ची गवाही देता हूं, वह जीवित है। मैं जानता हूं कि वह जीवित है और इस गिरजे का मुख्य है। ये बातें मैं अपने अनुभव से जानता हूं, बिना किसी वाणी या गवाही के। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम और मैं अनंत सच्चाइयों को कभी नहीं भूलेंगे। अति महत्वपूर्ण रूप से हम जीवित और प्रेमी स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं। उनकी एकमात्र इच्छा हमारी अनंत खुशी है। इन सच्चाइयों की मैं यीशु मसीह के नाम में गवाही देता हूं, आमीन।
Dear brothers and sisters, as part of our heavenly Father's plan, he allowed sorrow to be woven into
हमारे स्वर्गीय पिता की योजना का भाग होने के कारण उन्होंने पीड़ा को हमारे नश्वर जीवन अनुभव से में गुथे हैं जाने की अनुमति दी, जबकि ये दर्दनाक परीक्षण हम पर आसमान रूप से गिरते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं कि यह एक वर्ग से दूसरे दूसरे हम सब कष्ट भोगते हैं और संघर्ष करते हैं। यह मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाएगा एक बड़ी समझ की ओर कि क्यों होना चाहिए। जब हम जीवन के मुश्किल अनुभवों को मसीह में विश्वास के लेस द्वारा देखते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी पीड़ा में ईश्वरीय उद्देश्य से होता है। विश्वसनीय अनुभव कर सकते हैं। पत्रस की प्रतिवादी सलाह पर उन्होंने लिखा, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। जैसे कि हम अपने मनों को समझने की ओर लगाते हैं, हम अपनी योग्यता को दोनों हमारे परीक्षण में दृढ़ और सीखने में बढ़ाते हैं और उनके द्वारा निर्मल होते हैं। ऐसी समझ एक उत्तर चिरायु प्रश्न को प्रदान करती है, क्यों बुरी चीजें अच्छे व्यक्तियों के साथ होती हैं। हर एक जो आज सुन रहा है, कुछ माप के अकेलेपन, निराशा, दुख और पीड़ा से परिचित है। आनंद प्राप्ति की पूर्णता का कोई और मार्ग है नहीं है। विश्वास की आंख और अनंत सच की समझ के बिना हम अक्सर पाते हैं कि विपत्ति और पीड़ा का नश्वरता से अनुभव, अंधेरा व ग्रहण, अनंत आनंद स्वर्ग के पिता की महान योजना को जानने में ला सकता है, जो वास्तव में खुशी की अनंत योजना है। परमेश्वर हमें विश्वास से अपनी विशिष्ट दुखों का जवाब देने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि हम आशीषों को प्राप्त कर सकें और ज्ञान को पा सकें, जो कोई और मार्ग से सिखा नहीं जा सकता। हम हर स्थिति और परिस्थिति में आज्ञाओं को रखने के लिए निर्देशित हैं, क्योंकि वह जो अपने दुख में विश्वसनीय है, उसका प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में उतना ही महान। और जैसे कि हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, यदि तुम पीड़ित हो तो अपने प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना में बुलाओ, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंदित हो। प्रेरित पौलुस, जो खुद दुखों से अनजान नहीं थे, अपने निजी अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला कि गहराई और सौंदर्य से अनंत रूप केवल अंत तक बने रहने और धैर्य से आता है। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, हम अपने दुखों के बीच में जान सकते हैं कि अनंत भरपाई का इनाम रखा है। पौलुस के अपने दुख, उत्पीड़न और जीवन की पीड़ा को हल्का या हल्का सा कलेश बोलने की क्षमता उनकी पीड़ा की तीव्रता को झुटलाती है, जो कि उनके लिए सुसमाचार के अनंत स्वरूप द्वारा निकली गई है। उनका यीशु मसीह में विश्वास सब चीजों को सहन योग्य बना देता है। 5 बार उन्हें बेतों से मारा गया था, 3 बार राई से, 1 बार पथराव, 3 बार उन्होंने जहाज की तबाही सही। अक्सर उन्हें मृत्यु की विपत्ति में डुबोया गया चोरों से और कुछ झूठे भाइयों द्वारा। उन्होंने थकावट, दर्द, भूख और प्यास को सहा, ठंड और नग्नता में कैद किया गया। हम में से बहुत ने परमेश्वर से पीड़ा को हटाने की यातनाएं की हैं, और जब हम राहत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, ये सोचकर कि वह हमें सुन नहीं रहे हैं, हम और चीजें सोचने के लिए प्रलोभित हो जाते हैं। मैं गवाही देता हूं कि उन क्षणों में भी वह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और एक वजह होती है निरंतर हमारी दुखों की जारी रखने की और हमारी मदद करते हैं उन्हें सहने की। एक परिचित और विचारात्मक बात पद है, पद में पौलुस ने अपने देह में एक गुमनाम कांटे के विषय में बताया, जिसने उन्हें बहुत दर्द दिया और 3 बार घुटनों पर ले आया। प्रभु ने भीख मांगते हुए कि इसे ले, पौलुस की प्रार्थना के जवाब में प्रभु ने उसे कांटे को नहीं हटाया, परंतु शांति से बोले और मन से समझाया करते कहते हुए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। एक नई सोच में समझते हुए पौलुस स्वीकार कर सका, और जो कांटा उसे दिया गया था उसके लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा, इसलिए मैं बड़े आनंद के निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जैसे कि हम अनंत स्वरूप अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारी अंत तक रहने की इच्छा बढ़ती है, हम उनकी सहायता करना सीखते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती, और हम प्रशंसा करना और अनुभवों के लिए धन्यवाद करना सीखते हैं। परमेश्वर हमें अनंत जीवन की राह और शिक्षकों को रखने की अनुमति देते हैं। जब हम अपने आपको पीड़ा से संघर्ष करते पाते हैं, हमारे लिए अपनी पीड़ा के संकेत चिन्ह अपनी निजी प्रेरित की पगडंडी पर देखना मुश्किल हो जाता है, परंतु जब हम अपने आप को कभी निराशा की अंधेरी खाई में पाए या खुशी और ऊंची सड़क पर दूसरों के दुखों में सीखना और लिए दया की भावना होना एक आशीष हो सकती है। हाल ही में दिए गए नियत कार्य में मैंने फिलीपींस में एक स्टेक सम्मेलन में भाग लिया। मेरा मोर ना टूट गया, जैसे कि मैंने भाई डेनियल अपिलाडो के दुखद अनुभव के बारे में जाना। भाई अपिलाडो और उनकी पत्नी का बपतिस्म 1974 में हुआ। उन्होंने पुनः स्थापित सुसमाचार को अपनाया और मंदिर में सील हुए। उसके बाद वे 5 बच्चों से आशीषित हुए। जुलाई 7, 1997 को जब भाई अपिलो स्टैक अध्यक्ष के तौर पर सेवा कर रहे थे, ताऊ उनके छोटे से घर में आग लग गई थी। भाई अपिलाडो का बड़ा बेटा माइकल ने अपने पिता को जलते हुए ढांचे में खींचा और बचा लिया, और फिर घर में जो दूसरे थे उन्हें बचाने के लिए गया। यह आखिरी समय था जब भाई अपिलाडो ने अपने बेटों को जीवित देखा। उस जाग उनकी पत्नी डोमिगा और उनके 5 बच्चों के ले लिए गए। वह वास्तविकता की भाई अपिलाडो परमेश्वर के अनुसार का जीवन जी रहे थे। जब वह हादसा हुआ, ना ही यह हादसा रुका और ना ही उसके बाद होने वाली पीड़ा से उन्हें मुक्त किया, परंतु उनकी अनुबंधों को रखने में ईमानदारी और मसीह में विश्वास के आभास के उन्हें वादे में विश्वास दिया कि वह अपनी पत्नी और परिवार के से एक बार मिलेंगे। यह आशा उनकी आत्मा के लिए एक सहारा बनी। मेरी भेंट के दौरान भाई अपिलाडो, जो अब स्टेक कुलपति हैं, ने मुझे अपनी नई पत्नी सिमोनेट और अपने 2 पुत्र राइफल और डेनियल से मिलाई। सच में यीशु मसीह टूटे हुए मनों को बंद सकते हैं कर और सकते हैं। भाई अपिलाडो की कहानी को बांट कर मैं चिंतित हूँ। उनकी हानि हमें कुछ को अपने दुखों और पीड़ा को तुलना में कुछ कम समझेंगे। मेरा अनुरोध है कि इससे तुलना ना करें, किंतु इस अनंत सिद्धांत में सीखें और लागू करें, जैसे कि आप अपने दुखों की भट्टी से निकलते हैं। यदि मैं आपसे निजी तौर पर बात करूं तो सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आपके निजी संघर्ष, आपके निजी दुख, पीड़ा, आपत्ति और हर तरह के कमजोरियां स्वर्ग पिता और उनके पुत्र को अच्छे से जानते हैं। विश्वास रखें, साहस रखें और परमेश्वर के वादों में विश्वास रखें। यीशु मसीह के उद्देश्य और मिशन में यह शामिल था कि वह लोगों को दर्द और बीमारियों को अपने ऊपर ले लेंगे, उनकी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लेंगे और लोगों की दुर्बलता के अनुसार बचाए थे। पूर्णता से उदारता की इन भेंटों को स्वीकार करने के लिए इन्होंने इतनी उदारता से प्रदान की है। हम सबको सीखना चाहिए कि पीड़ा सही सिखाता है या हमें किसी स्थायी परिणाम को प्रदान नहीं करता है। जब तक कि हम विचार पूर्वक अपने कष्टों से सीखने की व्यवस्था में विश्वास के अभ्यास के संयुक्त नहीं होते, एल्डर नेल एल मैक्सवेल ने बांटा कि क्या उन्होंने सीखा था इन उद्देश्यपूर्ण पीड़ा के शब्दों से। पीड़ा के कुछ अभिरूप, अंत तक अच्छे से बने रहना वास्तव में ऊपर रख सकता है, अंत तक दृढ़ बने रहने में उचित आज्ञाकारी बनना, अपनी पीड़ा के बीच अपने उपयुक्त अनुभव से सीखना शामिल है, किंतु इन चीजों से सरलता से निकल जाना, इनसे हमें उन मार्गों से निकालना चाहिए जो हमें पवित्र करें। मैंने दूसरों के जीवन और उदाहरण से देखा है कि यीशु मसीह में मजबूत और स्थायी विश्वास और उनके वादे बेहतर चीजों के आने में निश्चित ही आशा प्रदान करते हैं। यह आशा जो निश्चित है हमें स्थिर करती है, हमें वह बल और क्षमता लाने के लिए जिसकी अंत तक आवश्यकता है। हम जब हम अपनी पीड़ा को अपने नश्वर जीवन के उद्देश्य के आश्वासन से जोड़ सकते हैं और विशेष रूप से उन प्रतिफलों से जो स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, हमारी मसीह में विश्वास और बढ़ जाता है और हमें अपनी आत्मा से आराम प्राप्त होता है, तब हम सुरंग के अंत में प्रकाश को देखेंगे। एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने सिखाया, सुरंग के भी अंत में वास्तव में प्रकाश है। यह संसार की ज्योति है, उज्जवल और सुबह का तारा। वह ज्योति को अनंत है जो कि अब अंधेरा नहीं लाती। यह हम परमेश्वरों का परमेश्वर खुद है। हम शक्ति ले सकते हैं यह जान कर कि मुश्किल अनुभव इस जीवन में अस्थाई हैं। काली से काली रात भी सुबह लाती है। जब सब पूरा हो जाएगा, हमने सब चीजों को यीशु मसीह में विश्वास कर अंत तक सहन कर लिया होगा, हमसे वादा है कि परमेश्वर हमारे सारे आंसू हमारी आंखों से पोछेंगे। मैं गवाही देता हूं कि उद्धारकर्ता हम सबको आमंत्रित करता है उसके बलिदान को ग्रहण करने के लिए, जैसे कि हम उनमें विश्वास का अभ्यास करते हैं। वह हमें उठाते हैं और हमारे परीक्षणों के हमारे साथ होते हैं। आखिरकार हम सेलेस्टियल राज्य में बचाते हैं और मैं आपको यीशु मसीह में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विश्वास में अंत तक रहो और उनमें सिद्ध रहो।
And have perfect joy in Him, in the sacred name of Jesus Christ.
यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Brothers and sisters, I have recently been pondering this.
और बहनों, मैं हाल ही में इस प्रश्न पर चिंतन कर रहा था। यदि आपके वो सारे बच्चे सुसमाचार को जानते हैं, आपसे आता है उनका एक ही साधन, कितना वे जान पाएंगे? यह प्रश्न हम सब पर, जो बच्चों से प्रेम सलाहकार प्रभाव डालने वालों पर लागू होता है। क्या यहाँ पर कोई उपहार है जिससे कि हम हमारे बच्चों में डाल सकते हैं, तब फिर यादें उनके हृदय की गहराई में बसे कि हम जाने की मुक्तिदाता जीवित है? क्या वे जानते हैं कि हम जानते हैं? और अति महत्वपूर्ण, क्या उन्होंने खुद जाना है कि वह जीवित हैं? जब मैं एक बालक था, मैं अपनी माँ के लिए अति कठिन बच्चा रहा। पालन पोषण करने के लिए मेरे पास बहुत अति में ऊंचा था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि सबसे बड़ा डर वह था कि मैं किशोर अवस्था नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत ही चंचल था। मुझे याद है कि युवा लड़का एक विशेष प्रभु भोज सभा में बैठा था अपने परिवार के साथ। मेरी माँ ने एक नया धर्मशास्त्र का सेट प्राप्त किया था। नया सेट का जोड़ पूरे स्तर का काम एक पाउंड में है और इस नोट के लिए पन्ने हैं। सभा के दौरान मैंने उनसे पूछा, क्या मैं धर्मशास्त्र पकड़ सकता हूँ? आशा के साथ मेरी श्रद्धा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने उसे मेज पर रख दिया। जैसे मैंने इनका धर्मशास्त्र को लिया, मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने नोट के भाग में व्यक्तिगत उद्देश्य लिखे थे। उनके उद्देश्य के विषय प्रदान किए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 6 बच्चों में से दूसरा हूँ। मेरा नाम ब्रेट है। मेरी माँ ने लाल में एक उद्देश्य लिखा था, ब्रेट के साथ धैर्य।
As further evidence to help you understand the
जैसे आगे के सबूत आपकी सहायता समझने में करेंगे कि मेरे अभिभावकों में हमारे परिवार को बढ़ाने में चुनौतियां झेलनी पड़ी थी। चलिए मैं आपको अपने परिवार के धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के बारे में बताता हूँ। हर सुबह मेरी माँ मॉर्मन की पुस्तक नाश्ते के दौरान पढ़ती थी। इस वक्त के दौरान मेरा बड़ा भाई मैं शांति से पर श्रद्धा के साथ बैठते थे। पूरी तरह से ईमानदार हम सुनते नहीं थे। हम सीरियल पैक पर लिखे छप को पढ़ते थे। आखिरकार एक सुबह मैंने अपनी माँ से भिड़ने का निर्णय लिया। मैं चिल्लाया, माँ क्यों यह हमारे साथ कर रही हैं? क्यों आप हर सुबह मॉर्मन की पुस्तक पढ़ती हैं? मैं तब एक बात कही, शर्मिंदा हूँ मानता हूँ। सच में मैं विश्वास नहीं कर सका कि मैंने वास्तव में ये कहा था। मैं उनको बताया, माँ मैं सुनता नहीं हूँ। उनका प्यारा सा जवाब मेरे जीवन में परिभाषित लम्हा था। वह कहती हैं, बेटा मैं एक सभा में थी जहां प्रेसिडेंट मैरन जी रोमने ने धर्मशास्त्र अध्ययन के बारे में सिखाया था। इस सभा के दौरान मुझे एक वादा मिला कि यदि मैं मॉर्मन की पुस्तक को हर दिन अपने बच्चों के साथ पढ़ूंगी, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगी। तब फिर उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और सच्चे समर्पण के साथ कहा, और मैं आपको नहीं खोऊंगी। उनके शब्दों ने मेरा हृदय छेद दिया था। मेरी अपूर्णता के साथ नहीं खड़े होना मेरे महत्व को बचाया गया। उन्होंने मुझे अनंत सच्चाई सिखाई कि मैं एक प्रिय स्वर्गीय पिता का बेटा हूँ। मैंने सीखा कि कोई बात नहीं, जो कोई भी परिस्थितियां हो वह मेरे लिए कीमती है। यह एक संपूर्ण क्षण था एक अपूर्ण लड़के का। मैं सदा के लिए आभारी हूँ मेरी दूत माँ का और सारे दूतों का जो बच्चों से प्रेम करते हैं। मेरी अपूर्णता के साथ नहीं खड़े होना, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि सारी बहनों को मैं उन्हें दूत बुलाता हूँ। सियोन में माँ है, चाहे वे विवाहित हों या ना हो, इस धरती का अनुभव पर बच्चे हों या ना हो। सालों पहले प्रथम अध्यक्षता ने घोषित किया, मातृत्व पवित्रता के निकट है। यह उच्चतम पवित्र सेवा मानव जाति में स्वीकृत है। यह उसको उस स्थान पर रखते हैं जो उसका पवित्र बुलाहट और सेवा का दूतों से अलग कर सम्मान करते हैं। मैं दूतों का आभारी हूँ सारे गिरजे में जो गर्व और प्रेम से स्वर्गीय पिता के बच्चों की अनंत सच्चाई करते हैं। मैं मॉर्मन की पुस्तक के उपहार के लिए आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सच है, इसमें सुसमाचार की पूरक है। मैं किसी से बेखबर हूँ जो मेहनत से हर दिन सच्ची लगन के साथ और मसीह विश्वास के साथ मॉर्मन की पुस्तक पढ़ता है, जिसने अपनी गवाही खो दी और चला गया। मोरोनी भविष्यवाणी का वादा उसके साथ सारी बातों की सच्चाई की कुंजी है, सम्मिलित है निर्णय लेने से और शैतान के धोखे से बचने की योग्यता। मैं आभारी हूँ मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह का। उद्धारकर्ता ने संपूर्ण उदाहरण दिया कि कैसे जीते हैं इस अपूर्ण और अनुचित संसार में। हम उससे भी प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमें प्रेम किया। उसका प्रेम हमारे लिए विशाल है, वही हमारा सच्चा मित्र है। उसका पसीना हमारे लिए लहू की बूंदे हैं। हमारे लिए उसने कदाचित अक्षम्य माफ कर दिया, उसने अप्रियों से प्रेम किया, उसने वो किया जो किसी ने नाश्वरता से नहीं किया। उसने उल्लंघन से ऊपर उठने के लिए पीड़ा सारी मानव जाति की बीमारी के लिए प्रायश्चित प्रदान किया। यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण हम जीवित रह सकते हैं। वादव के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघर्ष कैसा भी हो, हमें उसमें हमेशा आशा रही है।
Because of the atonement of Jesus Christ, we can live with the promise that no matter what our struggles may be, we can.
हमें उसमें हमेशा से आशा रही है, जो बचाने में पराक्रमी है, उसके प्रायश्चित के कारण हम आनंद, खुशी, शांति और अनंत जीवन पा सकते हैं।
President Boyd K. Packer stated. कुछ
थोड़े बचाव के लिए छूट जो अभाव के लिए विनाश लाते हैं, कोई आदत नहीं, लत नहीं, विरोध नहीं, उल्लंघन नहीं, धर्म त्याग नहीं, अपराध नहीं, बजाय पूरी तरह से माफी के वादे को लाते हैं। मसीह के प्रायश्चित का यही वादा है। मानव इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण अद्भुत घटना उद्धारकर्ता की सेविकाओं में अमेरिका में भेंट करने गए। अपने मन में कल्पना कीजिए कि वह जाना कैसे रहा होगा, जैसे मैं उसके प्रेम की करुणा भरी देख में संतों का समूह मंदिर में एकत्र हुए। मैंने प्रत्येक बच्चों पर ध्यान दिया जिनको मैं जीवन से अधिक प्रेम करता हूँ। मैंने उन्हें मानने की कोशिश की, कैसे मैं हमारे छोटे बच्चों को देख पाऊंगा। व्यक्तिगत साक्षी के उद्धारकर्ता ने हर बच्चे का अपने पास आने का निमंत्रण दिया। उद्धारकर्ता के खुले हाथों की गवाही, हर बच्चे का साथ खड़े होने की, एक के बाद एक कोमलता से उसके हाथों और पैरों के जख्मों को महसूस करके, और तब हर एक ने खड़े होकर और गवाही बांटी कि वह जीवित है, अपने बच्चों को मोड़कर और बोले, माँ पिता यह वही है।
To have our children turn and say, Mom, Dad, it's him. I don't know if anything in this
मैं नहीं जानता कि संसार में कुछ भी अधिक आनंद और खुशी ला सकता है, यह जानकर कि हमारे बच्चे उद्धारकर्ता को जानते हैं, वह जानते हैं कि किस साधन की और देख अपने पापों की क्षमा के लिए। इसीलिए गिरजे का सदस्य के रूप में हम मसीह का प्रचार करते हैं और हम मसीह की गवाही देते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के साथ प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम उनके साथ प्रत्येक दिन धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं। इसी तरह से हम उन्हें शिक्षा देते हैं दूसरों की सेवाही करना, ताकि वे अपने बच्चों आशीषों में ढूंढें, जैसे वे अपने आप को दूसरों की सेवा में खोते हैं। जैसे हम अपने आप को इन साधारण शिष्यता के नमूनों पर समर्पित करते हैं, हम अपने बच्चों को उदारकर्ता के प्रेम और निर्देशन और सुरक्षा के साथ अधिकार देते हैं, जैसे वे विपत्तियों की आंधी का सामना करते हैं। सुसमाचार सच के लिए एक खोई हुई भेड़ के बारे में, यह एक कुएं पर सामरिय स्त्री के बारे में, यह एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में है, यह एक छोटे बालक के बारे में है जो दावा करता है वह नहीं सुन रहा। यह हम सबके लिए, जैसे अपूर्ण, जैसे हम उद्धारकर्ता के साथ एक होते हैं, जैसा तू है पिता मुझे और तू तुझ में। मैं गवाही देता हूं कि हमारे पास प्रिय स्वर्गीय पिता हैं जो हमें नाम से जानते हैं। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है, वह ही सिर्फ एकलौता और पिता के साथ हमारा वकील है। मैं आगे गवाही देता हूं कि उद्धार उसके नाम के लिए द्वारा आता है, किसी तरह से नहीं। यह मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने हृदय से समर्पित कर अपने हाथों से स्वर्गीय पिता के बच्चों की उसको जानने और उसके प्रेम को महसूस करने में मदद करनी है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे अनंत पिता हमारे अनंत आनंद और संसार में और आने वाले संसार में खुशी का वादा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My dear brothers and sisters,
when I was 12 वर्ष का था, दक्षिणी स्वीडन के एक तटीय शहर कोटबर्ग में मेरा परिवार रहता था। हम एक फिर से बने बड़े से घर के गिरजे में जाते थे। एक रविवार मेरा मित्र स्टीफन, जो केवल एक दूसरा डीकन इस शाखा का था, मुझे कुछ उत्साह से गिरजे में मिला। हम गिरजे से सटे हुए प्लावी क्षेत्र गए और उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा
50 years ago, we attended church in a large, remodeled home. One Sunday, my friend Stefan, the only other deacon in the branch, greeted me at church with some excitement. We went to the chapel's adjacent overflow area, and he pulled from his pocket a large firecracker.
उसने अपनी जेब से बड़ा सा पटाखा और माचिस निकाली। एक युवा साहस प्रदर्शन में मैंने पटाखे को लिया और उसकी लंबी स्लेटी तार में आग लगा दी। मेरा इरादा आग बुझाने का था इससे पहले कि वो जलती, परंतु जैसे ही मैंने ऐसे करने की कोशिश की, करते हुए अपनी उंगलियों को जला लिया, मैंने पटाखे को गिरा दिया। स्टीफन और मैंने डरते हुए निरंतर उस तार को जलते हुए देखा। पटाखा फूटा और हम उस में से सल्फर की भवक ने उपलावित क्षेत्र और गिरजे को भर दिया। हमने जल्दी से बिखरे हुए पटाखे के अवशेषों को साफ किया और खिड़कियों को बंद करने के लिए खोला। सरलता से आशा करते हुए किसी ने ध्यान न दिया। भाग्यवश किसी की कोई भी चोट न लगी और कोई हानि नहीं हुई। जैसे ही सदस्य सभा में आए, उन्होंने एक जोरदार गंध महसूस की। उसे अनदेखा करना मुश्किल था। गंध ने सभा के पवित्र स्वरूप को विचलित कर दिया, क्योंकि वहाँ केवल दो डीकन थे और उसमें जिसे केवल विघटन सोच का विवरण दिया जाता था। मैंने प्रभु भोज को दिया और मैंने अपने आप को उसे लेने की योग्य नहीं समझा। जब प्रभु भोज की थाली, जो मुझे ग्रहण करने के लिए दिया गया, मैंने ना ब्रेड लिया ना पानी, मुझे बुरा लगा। मैं शर्मिंदा था और मुझे पता था कि जो मैंने किया था उससे परमेश्वर अप्रसन्न थे। गिरजे के बाद शाखा अध्यक्ष फ्रैंक लिनबर्ग, एक विशिष्ट चमकीले स्लेटी बालों से बूढ़े व्यक्ति ने मुझे अपने ऑफिस में आने को कहा। मेरे बैठने के बाद उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैंने ध्यान दिया कि तुमने प्रभु भोज नहीं लिया। उन्होंने पूछा क्यों। मुझे लगा उन्हें पता था क्यों। मुझे निश्चित था कि सबको पता था कि मैंने क्या किया था। जब मैंने उन्हें बताया, उन्होंने पूछा मुझे कैसा लगा। आंसुओं से मैंने रुक के कहा, मैं शर्मिंदा था और जानता था कि परमेश्वर को मैंने नीचा दिखाया था। अध्यक्ष लिनबर्ग ने एक घिसे पिटे सिद्धांत और अनुबंध की कॉपी खोली और मुझे कुछ रेखांकित पदों को पढ़ने के लिए कहा। मैंने निम्न लिखित ऊंचे स्वर में पढ़ा, और वो जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया है वही क्षमा किए जाते हैं, प्रभु उन्हें फिर याद नहीं रखते। और इससे मनुष्य जाने कि यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करता है और वो उन्हें स्वीकार करेगा और छोड़ देगा। मैं भी कभी अध्यक्ष लिंडबर्ग की ये दयालुता भरी मुस्कान नहीं भूलूंगा। जब मैंने पढ़ना खत्म कर ऊपर देखा, कुछ भावनाओं के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि मेरे लिए प्रभु भोज को फिर से लेना ठीक है। जैसे ही मैंने उनका ऑफिस छोड़ा, मुझे अवर्णनीय आनंद का आभास हुआ। ये आनंद पश्चाताप का एक स्वाभाविक परिणाम है। प्रायश्चित शब्द का अर्थ तत्पश्चात अनुभव करना और बदलाव को सूचित करना है। स्वीडिश में ओमवैड शब्द है जिसका सरल सा अर्थ पीछे मुड़ना है। ईसाई लेखक सी.एस. लुईस ने बदलाव की आवश्यकता और उसकी प्रणाली के विषय में लिखा। उन्होंने कहा कि पश्चाताप फिर से सही मार्ग पर हो जाना शामिल करता है। उन्होंने कहा, एक गलत गणित को भी सही किया जा सकता है, परंतु केवल वहां तक जाकर जहां से गलती शुरू हुई थी, और उसी जगह से फिर से एक नई शुरुआत करके कभी भी केवल पीछे उसी जगह पर जाकर नहीं। पश्चाताप का अंश अपने व्यवहार को बदलना और सही मार्ग पर वापस जाना है, परंतु केवल अंश वास्तविक पश्चाताप में मनों के बदलने और परमेश्वर की इच्छा और पापों को त्यागना शामिल होता है। जैसे कि जेकेल ने विवरण दिया, पश्चाताप, पाप से फिरना, न्याय और धर्म के काम करने लग जाना, जन बंधक फेर दे, जीवन दायक विधियों पर चलने लगे बिना कुटिल काम के। और ये भी एक अपूर्ण विवरण है, ये सही तरह से पश्चाताप की शक्ति को नहीं पहचानते जो कि पश्चाताप को संभव करता है, हमारे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित का बलिदान। वास्तविक पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास होना शामिल है, विश्वास जो बदल सकता है, विश्वास जो हमें माफ कर सकता है, और विश्वास कि वो हमारी मदद और गलतियों से बचाने में करेंगे। इस तरह का विश्वास उनके बलिदान को हमारे जीवन में प्रभावशाली बनाता है। जब हम उद्धारकर्ता की मदद से आगे समझते और पीछे मुड़ते हैं, हम उनके वायदों में आशा और क्षमा में आनंद को महसूस करते हैं। मुक्ति दादा के बिना मिलने वाली आशा और आनंद लुप्त हो जाते हैं और पश्चाताप केवल एक व्यवहार बन जाता है। परंतु उनमें विश्वास का अभ्यास करने से हम उनके पापों को क्षमा करने की क्षमता और इच्छा की ओर परिवर्तित होते हैं। अध्यक्ष बॉयड के पैकर ने पश्चाताप की आशा भरे वायदों की पुष्टि अपने आखिरी महासम्मेलन में 2015 में की थी। उन्होंने विवरण दिया उद्धारकर्ता के बलिदान की शक्ति को चंगा करने में, जिसे मैं ज्ञान का खिंचाव आधे शतक में प्रेरित सेवा से पाने को समझता हूँ। अध्यक्ष पैकर ने कहा, मसीह का बलिदान कोई पथ मार्ग कोई निशान नहीं छोड़ता, वह जो स्थिर करते हैं वो स्थिर है, वो चंगा हो जाता है, और वो जो चंगा करता है चंगा रहता है। उन्होंने निरंतर कहा, बलिदान हम में से हर एक को वापस प्राप्त करने के योग्य बनाता है, कोई भी निशान नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि चाहे हमने कुछ भी किया हो, या हम कहीं भी हो, या कैसे कुछ हुआ हो, यदि हमने सच में पश्चाताप किया है तो उद्धारकर्ता ने हमसे वादा किया है कि वो हमें क्षमा करेंगे, और जब वो क्षमा करेंगे वही समाधान वही बलिदान फिर दाग को धोकर और साफ कर सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल या कितना लंबा या कितनी बार किया गया हो। उद्धारकर्ता के बलिदान की बहुत चौड़ाई और गहराई और आपके और मेरे लिए सीम है, परंतु ये हम सब पर कभी भी थोपी नहीं जाएगी। जैसे कि भविष्यवक्ता लेहाई ने व्याख्या की, हमें पर्याप्त निर्देश के बाद और अच्छे की बुरे से पहचान, हम स्वतंत्रता और अनंत जीवन का चुनाव करने के लिए आजाद हैं। मनुष्य के सबसे महान मध्यस्थ के द्वारा या बंधन और मृत्यु का चुनाव करके, दूसरे शब्दों में पश्चाताप एक चुनाव है। हम करते हैं और कभी करते विभिन्न चुनाव करते हैं। ऐसे चुनाव एकदम से गलत ना लगे, परंतु वो सच्चे पश्चातापी बनने से रोकते हैं और हमारी वास्तविक पश्चाताप को खोजना असंभव करते हैं। जैसे कि हम दूसरों को दोष देने का चुनाव करते हैं। गोतेबर्ग में 12 वर्षीय होने से मैं स्टीफन को दोष दे सकता था, वही था जो गिरजे में पहले बड़े पटाखे और माचिस लेकर आया था, किंतु दूसरों को दोष देना यदि न्यायिक भी है तो हमारे व्यवहार को बहाने बनाने का अवसर देता है। ऐसा करने से हम अपने कार्यों की जिम्मेवारी दूसरों पर डालते हैं। जब जिम्मेवारी को दूसरों पर डाल दिया जाता है, हम दोनों जरूरतों और अपनी योग्यता को खत्म कर देते हैं। हम अपने आप को अभागी पीड़ितों सा बना लेते हैं, बजाय इसके स्वतंत्र कार्य करने के योग्य करता। दूसरा चुनाव जो पश्चाताप में बाधा उत्पन्न करता है, अपनी गलती को कम करना। खुद भर के पटाखे की घटना में कोई चोट नहीं लगी, कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंची और सभा भी हो गई। ऐसा कहना आसान होता कि पश्चाताप का कोई कारण ही नहीं था, परंतु अपनी गलती को छोटा कर लेना, चाहे उससे कोई तुरंत परिणाम न दिखे, बदलने की प्रेरणा को बदल देता है। ये सोच हमें हमारी गलतियों और पाप के अनंत परिणामों को देखने से रोकती है। और एक सोच ये है कि हमारे पाप कोई मान्य नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं चाहे हम कुछ भी करें। ये सोच प्रलोभक है जो धोखेबाज नेहोर निजारा हेमला के लोगों को सिखाया कि सारी मनुष्य जाति को अंत के दिनों में बचा लिया जाएगा और उन्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अंत में सब मनुष्यों को अनंत जीवन प्राप्त होगा। परंतु ये बहकाने वाली सोच गलत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, किंतु जो हम करते हैं वो उनके लिए मान्य रखता है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि हमें कैसे रहना है। हम उन्हें आज्ञाएं कहते हैं। उनकी प्रशंसा और अनंत जीवन हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारी वास्तविक पश्चाताप को विनम्रता से ढूंढने से समेत। इसके अतिरिक्त हम जाने देते हैं वास्तविक पश्चाताप को जब हम परमेश्वर को उनकी आज्ञाओं से अलग होकर चुनते हैं। आखिरकार यदि प्रभु भोज पवित्र न होता, यह मान्य नहीं रखता कि पटाखे की वो गंध उस गोते वर्ग की प्रभु भोज सभा में अशांति कारक थी कि नहीं। हमें सावधान होना चाहिए अनगिनत पापी व्यवहार से, जिन्हें परमेश्वर की ग्रंथकारिता उनकी आज्ञाओं से कम या रद्द किया जा सके। वास्तविक पश्चाताप उद्धारकर्ता का ईश्वरत्व और उनके अंतिम दिनों के कार्यों की मान्यता देना आवश्यक है। बहाने बनाने के बजाय हम पश्चाताप को चुने। पश्चाताप से हम अपने आप में आ सकते हैं, जैसे कि उड़ाऊ दृष्टांत में और अनंत आयात में अपने कार्यों के विचार करें। जब हम ये समझ जाते हैं कि कैसे हमारे पाप हमारी अनंत खुशी को प्रभावित करते हैं, हम न केवल सच्चे पश्चातापी बन जाते हैं, परंतु हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जब हमारा प्रलोभन के साथ सामना होता है तो अधिक संभावना है कि हम अपने आप से पूछें, विलियम शेक्सपियर के शब्दों में, मैं क्या जीता यदि मुझे वो मिले जो मैं ढूंढूं? एक सपने, एक सांस, झाग अस्थिर आनंद का। कौन मिनटों की खुशी खरीदता है हफ्ते भर रोने के लिए, या खिलौना पाने के लिए अनंतता को बेच देता है? यदि आप अनंतता की दृष्टि को खिलौने के लिए खो चुके हैं, तो हम पश्चाताप करने का चुनाव कर सकते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमारे पास एक और मौका है। लाक्षणिक और हम एक खिलौने को बिना सलाह खरीदे लेते हैं और अनंतता को फिर से पाने की आशा करते हैं, जैसे कि उन्होंने व्याख्या की, और ऐसा हुआ कि प्रभु तुम्हारा मुक्तिदाता ने शरीर में मृत्यु को सहा, उन्होंने सारी मनुष्य जाति के लिए दर्द सहा, ताकि सारे मनुष्य पश्चाताप कर सके और उनके पास आए। यीशु मसीह क्षमा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए कीमत दी है। हमारे मुक्तिदाता क्षमा करने का चुनाव करते हैं अपने अतुलनीय करुणा और प्रेम के कारण। हमारा उद्धारकर्ता क्षमा करना चाहते हैं क्योंकि उनका दिव्य भाव है, और एक अच्छे चरवाहे की तरह वो जब हम पश्चाताप को चुनते हैं वो आनंदित होते हैं। जैसे कि
we immediately invite the savior into our lives as Amulek taught.
जैसे कि हम अपने कार्यों के लिए दुखी हो, जब हम पश्चाताप करने को चुनते हैं, हम उद्धारकर्ता को अपने जीवन में तुरंत ही आमंत्रित करते हैं। जैसे कि अमलेक ने सिखाया, तुम मांगे आओ और अपने हृदयों को अब और कठोर मत करो, क्योंकि देखो अब तुम्हारे उद्धार का समय और दिन है, और इसलिए यदि तुम पश्चाताप करोगे, अपने हृदयों को कठोर नहीं करोगे, तो तुम तुरंत मुक्ति की महान योजना तुम्हारे पास लाई जाएगी। सुसमाचार की अच्छी खबर ये तथ्य है कि हम पश्चाताप करते हैं, अपराध को धोया जा सकता है, हम आनंद से भरे जा सकते हैं, अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं और अंतरात्मा की शांति मिल सकती है। हम पाप की निराशा और बंधन के एहसास से मुक्त हो सकते हैं। हम परमेश्वर की अद्भुत ज्योति से भरे जा सकते हैं और दर्द कभी न हो। पश्चाताप केवल संभव ही नहीं, परंतु उद्धारकर्ता के कारण आनंदमय भी है। मुझे ये भावनाएं याद हैं जिन्होंने मुझे शाखा अध्यक्ष के ऑफिस में पटाखे की घटना के बाद ऊपर से धो दिया। मैं जानता था कि मुझे क्षमा किया गया है, मेरे अपराध की भावनाएं गायब हो गई हैं, मेरी उदास मनोदशा उठी और मेरे मन को हल्का महसूस हुआ। भाइयों और बहनों, जैसे कि हम इस सम्मेलन को समापन करते हैं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने जीवन में और भी आनंद को महसूस करें। आनंद यीशु मसीह के बलिदान के ज्ञान में जो सच है, आनंद उद्धारकर्ता की क्षमता में, इच्छा और क्षमा की आकांक्षा में, और आनंद पश्चाताप को चुनने में। चलिए हम सब उद्धारकर्ता के निर्देशों का पालन करते हैं कि आनंद के साथ मुक्ति के कुएं से पानी निकालते हैं। हम पश्चाताप को चुने, अपने पापों को त्याग दें, अपने मनों को मोड़ लें और इच्छा चारूर उद्धारकर्ता का अनुसरण करने की करें। मैं गवाही देता हूँ उनकी जीवित सच्चाई की। मैं साक्षी और प्राप्त करता हूँ उनकी अतुलनीय करुणा, दयालुता और प्रेम का। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके बलिदान की पूर्ति की आशीषें आपकी हो, यीशु मसीह के नाम में।
As they have been in mine. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
At the conclusion of the conference,
इस समय सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस सेवाओं की तैयारी में परिश्रम से अपना सहयोग दिया है। हम उन सभी वार्ताकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा संबोधन किया और मधुर संगीत उपलब्ध कराया। हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस सेवाओं की तैयारी में परिश्रम और विश्वभर की इन कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है। गायक मंडली इस सभा का समापन Let us all press on गाकर करेगी। उसके पश्चात प्रार्थना 70 के एल्डर डेरिक डब्ल्यू कॉपस्टी करेंगे और इसके बाद सम्मेलन स्थगित किया जाएगा।
Yeah.
Oh, dear Heavenly Father.
हमारे स्वर्गीय पिता, इस शानदार सम्मेलन के अंत में हमारे हृदय भरे हुए प्रेम को आपके व्यक्त करते हैं, आपके यीशु पुत्र के प्रति। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं शानदार उद्धारकर्ता उद्धार के प्राण के लिए, हमारे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के लिए। हम उस उपहार को गले लगाना चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें भविष्यवक्ताओं द्वारा हमें निर्देशन दिया गया, हमें मार्गदर्शन किया गया, हमें प्रेरणा दी गई। हम उस बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जगह पे हम अपने घरों पे सही जगह पे पहुंचे और जो कुछ भी हमने सुना है उस पे हम इस पे अमल करें और आपकी पवित्र आत्मा के उपहार हमें मिले और हम उन सबको समझ सके जो हमें उससे कहा गया है, ताकि हमें दिलासा मिले, ताकि हम अच्छे शिष्य बन सकें। पिता, ऐसे जब हम जाते हैं यहाँ से, हम आपसे कहते हैं आपकी दिव्य सुरक्षा को हमें दें जब तक हम दोबारा मिलें। हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 186th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 186वां अर्थवार्षिक जनरल सम्मेलन का समारण था। वार्ताकर्ता के जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यकर्ताओं चुने गए थे। संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा दिया गया था। बोनेवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण के प्रबंध जन सेवा के लिए गया था। कोई भी प्रस्तुत पदन करने के लिए रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन बनाना अन्य उपयोग वर्जित है।